नमो भगवते वासुदेवाय। सब लोग बोलिए, बड़े प्रेम से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप में से किसी ने प्रश्न पूछा कि 110 साल क्यों नहीं आए, परसों क्यों नहीं आए? उसकी एक बहुत सुंदर कहानी है। जब भगवान गौलोक धाम में थे ना, अपने ओरिजिनल धाम में, जब यहाँ पर अवतार नहीं लिया था, तो उस समय एक गोपी है, उसका नाम है विरजा, जो एक नदी के रूप में भी है, विरजा नदी। हमारा जो भौतिक जगत है ना, मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड, इसके बीच में वो नदी है। जब हम मुक्त हो जाते हैं ना, तो हमें वो ब्रह्मांड पार करके, विरजा को पार करके फिर वैकुंठों में प्रवेश मिलता है। इट्स लाइक क्रॉसिंग ओवर। तो वो विरजा गोपी को भगवान मिल रहे थे एकांत में, तो राधा रानी वहाँ पर उनको मिलने आई। तो राधा रानी के भाई को ही भगवान ने ऐसा रखा था पहरेदार के रूप में, किसी को अंदर मत आने देना। तो उसने राधा को अंदर आने नहीं दिया, तो उसका और राधा का बहुत झगड़ा हो गया। तो झगड़े में राधा रानी ने उसको शाप दिया, जाओ तुम राक्षस बन जाओ, पृथ्वी पर जाकर राक्षस बन जाओ। तो वो भी कुछ कम नहीं था, उसने भी शाप दिया कि तुम्हारे प्रियतम से तुमको 100 साल से अधिक विरह होगा। तो राधा रानी भी नीचे अवतार लिया उन्होंने, और सीतामा जी भी आए, और सीतामा एक राक्षस के रूप में भी आए, उसका नाम था शंखचूड़। और शंखचूड़ राक्षस गोवर्धन के आसपास एक बार आया था, वहाँ पर भगवान कृष्ण ने उसका वध किया। तो शंखचूड़ के शरीर से ज्योति निकली और वो सीतामा के शरीर के अंदर प्रवेश कर गई। तो इट इज सेड दैट 10 ईयर्स ऑफ यूनियन, 100 ईयर्स ऑफ सेपरेशन, 10 साल का मिलन और 100 साल का विरह। पृथ्वी लोग जो है वहाँ पर एक अनोखा रस है, इसको कहते हैं विरह रस। गौलोक धाम में कभी विरह नहीं होता है, वहीं रहते, साथ में रहते हैं। लेकिन पृथ्वी में एक सर्वोत्तम रस की व्यवस्था भगवान ने की है, जो मिलन से भी ऊपर है, मिलन से भी अधिक आनंद उस रस में आता है। इसलिए आप देखेंगे राम अवतार में भी वही है, कुछ समय रहे फिर जंगल चले गए, अयोध्यावासियों को विरह के सागर में डूबा कर चले गए। कृष्ण भगवान भी 10 साल वृंदावन में रहे, फिर 100 साल बाहर रहे। ऐसा क्यों करते हैं भगवान? क्योंकि वो अपने विरह रस का आनंद भक्तों को देना चाहते हैं। जैसे ही भगवान शरीर से बाहर चले गए वृंदावन के, सूक्ष्म रूप में सबके हृदय में प्रवेश किया उन्होंने, भाव रूप में, और भाव रूप में उन्होंने सबको उत्कट संग दिया। बाहर से विरह का दुख, अंदर से अति उत्कट आनंद। ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, ये समझना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन विषय है ये। इट्स अ वेरी डीप सब्जेक्ट, मैटर ऑफ लव, बट सफिशियंटली टू अंडरस्टैंड, सफाइस टू से इज दैट जो विरह का रस होता है वो मिलन के रस से भी ऊंचा होता है। एक शेर है, बता दूं क्या आपको? काफी स्पिरिचुअल शेर है, इसलिए मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं है। मिलन का इंतजार है, मिलन का सच्चा आनंद है इंतजार में, मिलन का सच्चा आनंद है इंतजार में। अगर मिलन नहीं है तो क्या मजा है इंतजार में? इंतजार क्यों होता है? क्योंकि मिलन का अनुभव आपने किया है, इसलिए आप इंतजार कर रहे हैं उस मिलन के आनंद को अनुभव करने के लिए। लेकिन ज्यादा मजा है इंतजार में, जितना मिलन में नहीं उतना ज्यादा मजा इंतजार में होता है। इसलिए जब दूर आदमी होता है ना, व्हाट वी से, डिस्टेंस मेक्स द लव फॉन्डर। मिलने के बाद थोड़ा इतना अप्रूप कम हो जाता है उसका। पर वही व्यक्ति अगर घर में रह रही है 10 साल, लेकिन 1 साल के लिए गए आप, विदेश चले गए, आप चले गए, तो फिर बहुत याद आती है, बहुत कविताएं लिखी जाती हैं, खत लिखे जाते हैं, रात में नींद नहीं आती है। और वही आ गए वापस, तो 1 महीने में झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, है ना? एनीवेज, तो ये पॉइंट था, इसलिए वो 110 साल तक का विरह उन्होंने दिया और प्रेम की चरम सीमा का अनुभव सभी ब्रजवासियों ने किया उसमें। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने विषय छेड़ ही दिया तो बता देता हूँ, जब उद्धव जी आए ना, बहुत मैसेज आए उनको कि यहाँ से बहुत दुखी हैं सब लोग, परेशान हैं, मौत के ही समान हो गए हैं सब लोग, खाना पीना छोड़ दिया सब लोग ने, इतनी याद करते हैं आपकी। तो भगवान ने उद्धव को कहा कि जाओ भाई मेरा लेटर लेके जाओ, थोड़ा सांत्वना करके आओ। तो उद्धव जी सोच के गए थे कि अरे ब्रज में जाएंगे तो हमको उनको योग सिखाएंगे, क्योंकि उद्धव जी जो थे ना वो बृहस्पति के शिष्य थे, जो देवताओं के गुरु हैं उनका एजुकेशन इनको प्राप्त हुआ था, तो बड़े विद्वान थे पंडित, साथ साथ में योग का भी बड़ा ध्यान ज्ञान था उनको, योग आसन प्राणायाम सबका। तो वो सोच के गए थे मैं उनको ज्ञान दूंगा, क्योंकि आदमी रोता क्यों है, अज्ञान के वजह से, मैं उनको ज्ञान दूंगा, उनका रोना बंद करवाऊंगा, उनको समतल समतोल बनाऊंगा, आई विल मेक देम बैलेंस्ड एंड आई विल मेक देम फ्री फ्रॉम देयर सॉरो। तो जब लौट के आया ना वृंदावन में खत लेकर, तो पहले क्या देखा उसने, सभी गोपियां जो है ना वो गंगा किनारे जमुना किनारे में आसन लगाकर बैठी हैं, वो ध्यान कर रही हैं। तो अच्छा है, इनको थोड़ा योग का अभ्यास भी है तो मेरा योग सिखाना आसान हो जाएगा। उनको जाके पूछते हैं कि आप क्या योग कर रहे हो, तो कह रही है दिल में कृष्ण भगवान इतने गहरी जगह पर जाकर घुस गए ना, उनको बाहर निकालने के लिए योग कर रहे हैं। तो वो बोल रहे ऐसा योग तो हमने सीखा नहीं कभी, हमने कौन सा योग सीखा है, जो अंदर नहीं है उसको बाहर से अंदर बिठाने के लिए योग करते हैं, अंदर ध्यान करके उनको स्थित करने के लिए, टू मेक हिम इंस्टॉल्ड इन द हार्ट, ऐसा योग मैंने सीखा है। लेकिन ये योग उल्टा ही योग है, बसे हुए भगवान को निकालने के लिए। तो वहीं पर एक क्या कहते हैं हमारे बॉम्बे की भाषा में क्या कहते हैं, वही एक विकेट गिर गई उनकी, वहीं फेल हो गए, वो भ्रमित हो गए, भ्रमित उनका प्रेम का अद्भुत रूप देखकर। फिर आगे गए, सोचा कि मैं पहले जाके मैया बाबा को मिलूंगा, पूछते पूछते गए और फिर नंदगांव पहुंच गए और पूछा कि ये नंद बाबा का घर कहाँ है। तो एक ऐसा पिक्चर की तरह दिखने वाला, इट्स लाइक कैसे, व्हाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज नो इमोशंस, स्टंड पूरा, इट्स लाइक अ पेंटिंग यू नो, नो मूवमेंट्स, वेरी सैड, ऐसा व्यक्ति मिला ब्रजवासी। उसको पूछा गया कि नंद बाबा का घर कहाँ है, तो कहता है देखो ये दो नदियां आ रही ना, उसके किनारे किनारे पे चढ़ जाओ, नंद बाबा का घर पहुंच जाओगे। तो नदियां बह रही है उसके किनारे किनारे पे, ऊपर ऊपर जाता है तो एक घर से वो दो नदियां आ रही है, मानो नदियों का उबन घर से हो रहा है। तो घर में प्रवेश करते हैं तो एक नदी नंद बाबा के अश्रुओं की है, एक नदी यशोदा के अश्रुओं की, जब से कृष्ण गए हैं तब से अश्रु बंदी नहीं हुए। इस लुक्स लाइक ए फैंटास्टिक, नो लाइक फैंटेसी, क्या है सब, ये सच नहीं हो सकता है। लेकिन वो सच है कि नहीं समझने के लिए थोड़ा प्रेम हमारे मन में भी होना चाहिए, तो हमको आइडिया आएगा कि ये सच है कि झूठ है। इतना प्रेम था, वहीं पर उद्धव दंग हो गए कि इतना प्रेम हो सकता है, कितना प्रेम करते हैं भगवान से। तो फिर वहां आदान प्रदान हुआ, बताया तो यशोदा ने पूछा, मुझे मेरी याद भी आती है कि उसको यहां पर तो माखन के बिना उसको रोना आता था, वहां कोई माखन खिलाता क्या उसको, कोई ख्याल रखता है उसको, हमारे भी याद को उसको आती है क्या, ऐसे कई प्रश्न किए। उद्धव जी गदगद हो गए उनके भाव को देखकर। फिर वो गोपियों के पास गए, तो गोपियां जो है ना वो पब्लिक में उनसे बात नहीं कर सकी, उन्होंने कहा कि हम आपको एकांत में जंगल में लेके, जैसे हम लोग कैसे जंगल में आ गए ना अभी, ऐसे एकांत में जहां पर कोई सुनने वाला नहीं है, केवल हम ही रहेंगे, आप रहेंगे। उसका नाम है उद्धव क्यारी, क्यारी मतलब बैठने की जगह, उद्धव क्यारी जहाँ पर उद्धव को उन्होंने बिठाया और सब लोग ने बैठकर बातें करना शुरू किया। उद्धव जी की बोलती ही बंद हो गई, वो जो जो कुछ सोच के आए थे ना, बताऊंगा सिखाऊंगा उपदेश करूंगा बोध दूंगा, वो सब उसका मुंह बोलती ही बंद हो गई उसकी, और केवल सुनता रहा सुनता रहा सुनता रहा। इन्होंने सब लोगों ने अपने अपने अनुभव बताए और बाद में बोले कि अब चलो हम आपको दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ, कहाँ कहाँ क्या क्या बातें हुई, क्या क्या लीला हुई। तो उद्धव जी दो दिन के लिए आए थे, कहते दो दिन में क्या है, एक दिन में सिखा के आऊंगा उनको, साफ शांत करके आ जाऊंगा। लेकिन जब बोलती बंद हो गई, पूरे भ्रमित हो गई बुद्धि, तो फिर उनके साथ में 6 महीना ब्रज में रहे। 6 महीना ब्रज में रहकर, अभी यहां पर कितने वक्ता बोल रहे हैं बताइए, यहां पर मैं अकेला बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं। वहां पर एक श्रोता था उद्धव जी सुनने वाला, और करोड़ों गोपियां वक्ता बनकर बात कर रही थी, अपना अपना अनुभव बता रही थी। और क्योंकि जब वो कृष्ण के बारे में बोल रही थी तब उनका दुख थोड़ा सा हल्का होते हुए नजर आ रहा था, जब वो उसके बारे में बात कर रही थी उतना समय रोती नहीं थी वो, तो उनको लगा यही अच्छा तरीका है उनके सांत्वना का, इनको बोलने दो, ये अपना दुख भूलते रहेंगी, उनके बारे में याद करते रहेंगी, बोलते रहेंगी, तो मेरा काम जो करने के लिए आया था, शायद मेरा मेथड अलग था मन में, लेकिन वो मेथड फेल हो गया, लेकिन ये मेथड सक्सेसफुल मेथड है, इनको ही बोलने दो और ये अपना अपने आप को सांत्वना देती रहेंगी। दो दिन के बदले में 6 महीने ब्रज में रहे, 6 महीने ब्रज में सारा घूमे और सब जगह पर गोपियों ने क्या क्या हुआ उनको समझाया, तो एक अनोखी यात्रा थी वो, जिसमें करोड़ों वक्ता थे, एक यात्री था और सब ब्रज में यात्रा कराया उसको। तो ये है प्रेम, ब्रज की भूमि जो है ना वो संक्षेप में कहा जाए केवल प्रेम की भूमि है, बाकी लॉजिक नॉलेज पावर ऑपुलेंसेस डोंट वर्क देयर, यहाँ पर केवल प्रेम का काम होता है, और जिनके मन में थोड़ा बहुत प्रेम है वही ये सब समझ सकते हैं, बाकी सब के लिए ये सब बकवास है, इट्स ओनली अ वेस्ट ऑफ टाइम। अगर हमारे मन में थोड़ा बहुत भजन के वजह से थोड़ा बहुत प्रेम अगर जागृत हुआ है तो वी कैन रिलेट टू दिस स्टोरीज। तो ऐसा ये ब्रज जो है उसका लाभ लोगों को होना चाहिए, इसलिए हमारे गुरुदेव ने इसको यहाँ पर प्रकट किया है। ब्रज का जो धाम है वो संतों के माध्यम से प्रकट होता है, बिना संत के दिखाने से हमको कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। जब संत लोग हमको बताते हैं या उनकी कृपा से वो प्रकट होता है तो हमें दिखाई पड़ता है, और दिखाई पड़ेगा तो भी उन्हीं की कृपा से उसका अर्थ जो है वो समझ में आता है। तो अभी हम आगे जाएंगे तो यहाँ पर ब्रज के 7 मंदिर हैं, जमुना जी है और गोवर्धन भी है, तो गोवर्धन हम कल जाएंगे, वहाँ का लीला कल बताएंगे। हमारे पीछे कौन सा मंदिर है, ये मेमोरियल वैष्णव, यहां से कौन सा मंदिर पहला है, गोकुलानंद। गोकुलानंद जो है ब्रज के 7 मंदिरों से एक मंदिर है, ये मंदिर के आचार्य हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, ये एक भगवान के गोपी के अवतार हैं, और विश्वनाथ जी ठाकुर जी महाराज ने वैष्णव संप्रदाय को पुनर्जागृत किया था, तो इनके मंदिर में काफी और मंदिर के मूर्तियां भी हैं, श्राधा विनोद जी हैं, लोकनाथ जी महाराज जो कस्तूरी मंजरी के अवतार हैं उनके विग्रह राधा विनोद जी हैं। राधा विनोद जी जो है वो जब लोकनाथ जी महाराज अकेले वनों में भगवान को पुकारते हुए घूमते थे तो उमराव नाम का गांव है, वो गोवर्धन और बरसाने के बीच में है, उस उमराव नाम के गांव में एक कुंड है, उसका नाम है किशोरी कुंड, उस किशोरी कुंड में से ये स्वतः प्रकट हुए थे और उनके हाथ में आ गए थे, और जैसे हाथ में विग्रह आए वो हंस पड़े, इससे स्माइल्ड, और उन्होंने कहा कि आज से हम आपके साथ चलेंगे। तो लोकनाथ जी ने कहा तो मैं तो सन्यासी हूँ, एक दिन एक पेड़ के नीचे रहता हूँ, अगले दिन पेड़ भी बदली कर देता हूँ, मैं इतना विरक्त हूँ कि मेरे पास कोई साधन नहीं है, तो मैं आपको कैसे सेवा करूँगा। उन्होंने कहा कि जो भी भिक्षा मांग के दोगे वो मैं लूँगा, जो भिक्षा मांगेंगे हमको भोग लगा देना, हम लगेंगे उसको। तो लोकनाथ जी महाराज ने एक झोली बनाई पिशवी गले में उनके आकार की, छोटे से बहुत थे वो, छोटे से बहुत वो थैली में रखे वो घुमा करते थे ब्रज में, फिर बहुत साल ब्रज में घूमे उनको गले में लटकाते हुए, और एक दिन इस मंदिर में विराजमान हो गए। इस मंदिर में राधा विनोद जी का मूर्ति भी है, फिर राधा विजय गोविंद का मूर्ति भी है, राधा विजय गोविंद ने बलदेव विद्याभूषण को एक बार वैष्णवों की सभा में जब उनकी परीक्षा हुई उनको कहा गया कि आपके संप्रदाय में वेदांत सूत्र पर भाष्य है क्या, इज देयर एनी बोनाफाइड कमेंट्री ऑन वेदांत सूत्र इन योर संप्रदाय, देन ओनली यू कैन पार्टिसिपेट इन दिस डिस्कशन। तो तभी गौड़ीय संप्रदाय में वेदांत सूत्र पर भाष्य नहीं था, और जो प्रचलित भाष्य है वो श्रीमद् भागवतम है, लेकिन वो वेदांती लोग उसको मानते नहीं थे, उनको अलग भाष्य चाहिए था। तो ये कहते हैं कि मैं उसको लिखूंगा और आऊंगा, लेकिन वेदांत पर भाष करने के लिए कई साल लगते हैं लिखने के लिए। और ये गोष्ठी तो डिस्कशन जो संप्रदाय जो सेमिनार था वो 7 दिन का था। तो ये गोविंद जी के मंदिर में आए और वहाँ पर बहुत रोए। उन्होंने कहा कि हमारे संप्रदाय की लाज बचानी है तो वेदांत सूत्र पर भाष्य चाहिए। तो उसी रात में गोविंद जी प्रकट हुए और बलदेव जी को डिक्टेट किया उन्होंने वो भाष्य, रेडीमेड भाष्य डिक्टेट किया और विद्याभूषण जी ने उनको लिखा। और 2 दिन के अंदर वो लौट के गए उस सेमिनार में, उन्होंने वो भाष्य प्रकट किया। वो भाष्य जब प्रकट किया तो सारे वेदांती लोग आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने प्रणाम किया उनको कि 2 दिन के अंदर कोई वेदांत पर भाष्य कैसे कर सकता है। इनको भी नॉलेज था कि ये नहीं कर सकते, भगवान ही कर सकते। तो भगवान की कृपा से उनको वेदांत भाष्य प्राप्त हुआ। तो उन गोविंद जी का नाम पड़ा राधा विजय गोविंद, जिन्होंने विजय प्राप्त करा दी। तो विजय गोविंद जी का विग्रह भी इसी मंदिर में है। फिर एक और एक आचार्य हुए नरोत्तम दास ठाकुर, उन्होंने खेतुरी ग्राम जो आज बंगाल में आता है, बांग्लादेश में आता है, उस समय एक ही देश था पूरा भारतवर्ष। तो खेतुरी ग्राम में 5 भगवान के विग्रह जो है ना उन्होंने प्रकट किए थे। एक राइस का गोदाम था, उसमें कोई जाने के लिए डरता था, सांप रहते थे वहां पर बहुत। तो ये जब आ गए वहां पर, जब इन्होंने प्रवेश किया किसी को हिम्मत नहीं हो रही थी, सब डर रहे थे कि इसमें आवाज आती है। तो फिर जब ये गए तो सारे सांप अपने आप बाहर निकल गए। तो अंदर जाकर उन्होंने भगवान के 5 विग्रह प्रकट किए, उसमें से एक विग्रह था चैतन्य महाप्रभु का, वो विग्रह इस मंदिर में है। और एक विग्रह था राधा ब्रजमोहन, वो भी वृंदावन में है, जहां पर एक जगह है वृंदावन में जहां पर गोपी और वृंदावन गोपी और उद्धव जी की मुलाकात हुई थी। मैंने कहा था ना जमुना किनारे बैठे थे वो, उसको कहते हैं ज्ञान गुदड़ी, जहां पर उद्धव जी को ज्ञान हुआ था असली ज्ञान। हाँ, बृहस्पति का प्राप्त हुआ ज्ञान तो थियोरेटिकल नॉलेज था, गोपियों ने उनको प्रैक्टिकल नॉलेज दिया, इसको क्या कहते हैं रियलाइजेशन, साक्षात्कार कहते हैं। उस जगह का नाम है ज्ञान गुदड़ी। उस जगह पर ये विग्रह हैं राधा ब्रजमोहन के, जो नरोत्तम दास ठाकुर ने खेतुरी ग्राम से अपने भाई के द्वारा वृंदावन में भेजे थे। तो ऐसा ये मंदिर है राधा गोकुलानंद। फिर आखिर में जब राधा विनोद जी के जो आचार्य थे लोकनाथ जी महाराज जब गुजर गए तो उनका शरीर भी इसी मंदिर में समाधि के रूप में रखा गया। तो लोकनाथ जी महाराज की समाधि भी इसी मंदिर में है। ऐसा ये क्या कहते हैं ना हमारी भाषा में खचाखच भरा हुआ स्थान है। इसमें कई विग्रह हैं, कई समाधियां हैं, पुष्प समाधि है, मूल समाधि है, कई विग्रह भगवान के, कई अद्भुत चीजें हैं। एक ऐसी अद्भुत चीज है उसके अंदर इस मंदिर में कि चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण भगवान स्वयं जब वृंदावन में आए थे तो गोवर्धन की एक शिला गले में पहनते थे और वो शिला चैतन्य महाप्रभु के प्रेम के अश्रुओं से हमेशा भीगी रहती थी, कॉन्स्टेंटली बेथ्ड बाय द टीयर्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु। तो उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी को ये शिला भेंट में दे दी। जब भेंट में दे दी तो अपना अंगूठा दबाया तो अंगूठा का चिन्ह उस पर निर्माण हुआ। तो जिस पर चैतन्य महाप्रभु के अंगूठे का निशान है वो चौकोनी गोवर्धन शिला इस मंदिर में है, जो भगवान ने रघुनाथ दास गोस्वामी को भेंट में दी थी। ऐसी और भी चीजें हैं बहुत सारी, तो आप दर्शन कीजिए। उसके आगे कौन सा स्थान है? उसके आगे राधा रमन का मंदिर है। राधा रमन जी जो है वो गोपाल भट्ट गोस्वामी के पूजित विग्रह हैं। और ये 6 गोस्वामी थे जो चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे और उनमें से सबसे जूनियर थे, सबसे उम्र में छोटे थे और अकेले साउथ इंडियन थे। श्रीरंगम में इनका निवास था। श्री रंगनाथ जी के मंदिर के पुजारी वेंकट भट्ट थे, वो इनके पिताजी थे। चैतन्य महाप्रभु बचपन में चतुर्मास्य के समय इनके घर पे गए थे और 4 महीने इनके घर पे रहे। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं, भक्त अवतार है भगवान के। तो 4 महीने खत्म हो गए तो गोपाल उनके बालक थे 5 साल के, इतने मोहित हो गए भगवान से, इतने अट्रैक्ट हो गए थे कि भगवान को ही साथ में चलने का विचार किया उन्होंने कि आई कैन नॉट लीव यू, आई वॉन्ट टू गो विथ यू। तो भगवान ने उनको आदेश दिया, अभी आपके माता पिता जीवित हैं उनकी सेवा करो, जब माता पिता नहीं रहेंगे तो मेरे पास आ जाना, वृंदावन में आ जाना। तो फिर यथावकाश बहुत साल बीत गए, जवान हो गए, माता पिता बुढ़े हो गए, वेंकट भट्ट का देहांत हो गया, माता का देहांत हो गया, तो फिर महाप्रभु के आदेशानुसार ये वृंदावन चले गए। लेकिन जब ये वृंदावन चले गए, चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे, तो उनको लगा हमको यहाँ को बुलाया, खुद तो जगन्नाथपुरी में है लेकिन आदेश तो वृंदावन में आने का था, इसलिए वृंदावन ही चले गए। बहुत विरह में व्याकुल हो गए चैतन्य महाप्रभु के, तो चैतन्य महाप्रभु ने अपना महावस्त्र उनको भेज दिया थोड़ा सांत्वना करने के लिए। फिर भी विरह शांत नहीं हुआ। फिर महाप्रभु ने स्वप्न दिया उनको, स्वप्न में कहा कि आप गंडकी नदी चले जाओ। कहां पर? नेपाल में। आपने भी कभी गए वहां पर? मैं भी पिछले साल जाके आया वहां पर। गंडकी नदी में शालिग्राम शिलाएं निर्माण होती है, अद्भुत नदी है वो, रेडीमेड। वैसे गंगोत्री में एक कुंड है, सूर्य कुंड, उसमें शिवलिंग निर्माण होते हैं अपने आप। तो ये वहां चले गए भगवान के आदेश के अनुसार, और वहां पर स्नान कर रहे थे। स्नान करने के बाद में अर्घ्य देने के लिए कमंडलू भर रहे थे, तो कमंडलू में 12 शिलाएं प्रवेश किया। अभी पत्थर जो होते हैं ना, वो कहां होते हैं? नदी में तैरते रहते कि नीचे रहते? तो कमंडल में कैसे आए वो? ये तो चमत्कार है मेन। जो नदी के तल में रहते हैं वो इसके कमंडल में आ गए, तो उनको लगा भाई मिस्टेक आए होंगे, तो उन्हें वापस उतार दिया उनको। सेकंड टाइम जल भरा, तो सेकंड टाइम भी 12 शिलाएं अंदर प्रवेश कर गई, तो फिर उतार दिया। थर्ड टाइम जब भरने गए तो आकाशवाणी हुई, भगवान ने आकाशवाणी की, बोली मैंने कहा था ना कि मेरी मुलाकात आपको वहां पर होगी, ये शिलाएं मेरा स्वरूप है, मैं इसी रूप में आपके पास आ रहा हूं, इनको ले लो और वृंदावन जाके पूजा करो। तो फिर उन्होंने वो 12 शिलाएं स्वीकार की, वृंदावन ले गए और उनका पूजन शुरू किया। बड़ी लंबी कहानी आपको साफ में बता रहा हूं। तो बहुत दिन पूजन किया, बहुत दिन पूजन किया, तो एक दिन एक राजा आया। उसने सभी वृंदावन में जितने मंदिर थे, सब मंदिरों के ठाकुरों के लिए वस्त्र लाए, मुरली लाया, पीताम्बर लाया, ऊपर के वस्त्र लाए, अलंकार लाए, सबके लिए अलग अलग सेट बना के लेके आए थे। तो इनके पास भी आए और इनको भी दिया सब कुछ। तो इन्होंने कहा हमारे ठाकुर तो गोल मटोल हैं, शालिग्राम शिला है, उनको हाथ नहीं पैर नहीं, कहाँ रखूँ सब कुछ ही, तो आप मुझे मत दीजिए क्योंकि मेरे ठाकुर जी तो गोल गोल हैं, हम तो केवल चंदन गंग जमुना जल और तुलसी से सेवा करते हैं और कुछ करते नहीं इनके लिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं आपके नाम पर भी एक सेट है, आप रखो। तो तब से इनके मन में इच्छा जागृत हुई कि काश मेरे ठाकुर को भी अंग होते तो मैं भी उनकी वस्त्रों से अलंकार से सेवा करता। ये मन में विचार चालू हुआ और बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। फिर नरसिंह चतुर्दशी का उत्सव आया, उसमें क्या हुआ कि हमारे संप्रदाय में सब जगह पर भागवत जी में जहां पर नरसिंह देव का अवतार की लीला है उसको पढ़ते हैं सब लोग, उस उत्सव के रूप में कथा बताते हैं। तो भागवत जी खोला उन्होंने और पूरी कथा बताई। तो वो कथा क्या है कि प्रहलाद ने उंगली दिखाया, हिरण्यकश्यप ने पूछा क्या इस खंबे में भी है क्या, प्रहलाद ने कहा इस खंबे में क्या, सब जगह व्याप्त है, इस खंबे में भी है, और निर्देश किया खंबे के ओर, और तत्क्षण भगवान प्रकट हो गए, हुए कि नहीं। तो उसने कहा कि देखता हूं तुम्हारे भगवान कहां पर है, और गदा लेकर वो उस खंबे को मारने जा रहा था तो खंबा तोड़कर भगवान प्रकट हो गए। ये कथा खुद बोल रहे हैं, पढ़ के सुना रहे हैं लोगों को, और मन में क्या विचार आ रहा है, अगर प्रहलाद के एक अंगुली निर्देश से भगवान प्रकट हो सकते हैं तो मेरे शालिग्राम शिला से क्यों नहीं प्रकट हो सकते? समझ में आया? हाउ द सेंट इज थिंकिंग, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन में ये भाव उमड़ रहा है कि अगर प्रहलाद जैसे छोटे से बालक के एक उंगली दिखाने से भगवान इतने अद्भुत रूप में प्रकट हो सकते हैं तो मेरे शिला में से प्रकट हो सकते हैं। ऐसा विचार करके कथा समाप्त हुई, पुस्तक बंद किया, भगवान के ऊपर सब 12 शिला थी ना, 12 में रुमाल रखा, शयन कराया, सुला दिया भगवान को, खुद भी सो गए। नेक्स्ट डे जब उठे ना मॉर्निंग में, नरसिंह चतुर्दशी, और नेक्स्ट क्या है, वैशाख पूर्णिमा। पूर्णिमा के दिन क्या हुआ, जब सुबह भगवान को जगाने का समय आया ना, तो एक शिला के ऊपर का रुमाल था ना ऐसा था, बाकी सबका ऐसा था फ्लैट, एक शिला के ऊपर रुमाल था वो ऐसे ऊपर आया था। तो बड़ा कुतूहल हुआ, जमुना जी गए, स्नान किए, शुद्ध हो गए, तुरंत आ गए, और जब रुमाल खोला तो 12 शिला में से एक शिला में से भगवान प्रकट हो गए थे। 12 उंगली उंगली के साइज के, हाँ, छोटे से, मतलब अराउंड 6 and 8 inches, एक शिला के सामने के भाग से वो पूरे प्रकट हुए थे। छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पैर, बहुत सुंदर, वेल फॉर्म्ड। तो उन्होंने अपने सीनियर गोस्वामियों को बुलाया और दिखाया कि ऐसे ऐसे मेरे मंदिर में चमत्कार हुआ है। तो रूप गोस्वामी ने उनको बताया, जो सबसे सीनियर थे, कि जो भगवान के पैर है ना, चरण कमल, वो जो विग्रह है उनको मदन मोहन जी कहा गया है। भगवान का वक्षस्थल जो है, जो भगवान के समान था, वो मूर्तियों को गोविंद जी कहा है। और जिस मूर्ति का मुख कमल भगवान के समान था उसको गोपीनाथ कहा गया है। ये भगवान के ग्रेट ग्रैंडसन थे, उनका नाम था वज्रनाभ। तो वज्रनाभ को भगवान ने आदेश दिया था, जब मैं जाऊंगा ना निकल के अपने धाम में अंतर्धान हो जाऊंगा, तो मेरे मूर्तियों को निर्माण करना और जगह जगह स्थापन करना और मेरी लीला स्थलियों को बनाए रखना, ताकि लोग आके दर्शन करेंगे, मेरी याद करेंगे। तो वज्रनाभ ने पहली मूर्ति बनाई, और उस समय कोई नहीं था, केवल उत्तरा थी जिसने भगवान को दर्शन किया था, बाकी सब भी चले गए थे। तो उत्तरा ने कहा, इस मूर्ति के चरण कमल जो है साक्षात भगवान के समान है, तो उनका नाम मदन मोहन रखा। अगला विग्रह बनाया, दिखाया, तो कहते हैं इनका जो ये पार्ट है ना, ट्रंक पार्ट, वक्षस्थल, वो साक्षात भगवान के समान है, तो उसका नाम रखा गोविंद जी। तीसरा विग्रह बनाया, तो उन्होंने कहा कि इसका मुख कमल जो है ना, चेहरा जो है वो भगवान के जैसा है, तो उसको गोपीनाथ नाम दिया, और तीनों मंदिरों की स्थापना किया उन्होंने। जब ये मूर्ति प्रकट हो गई, अभी मैंने तो सब बैकग्राउंड क्यों बताया आपको, सर कनेक्शन इस मूर्ति से है। जब ये मूर्ति प्रकट हुई तो रूप गोस्वामी ने कहा कि मदन मोहन जी के चरण, गोविंद जी का वक्षस्थल और गोपीनाथ जी का मुख कमल, तीनों एक ही मूर्ति में है। इसका नाम उन्होंने रखा राधा रमण। आज भी जैसे कहा गया शास्त्र में, अगर आपको बहुत कम समय हो वृंदावन में जाने के लिए और एक ही मंदिर जा सकते हो, तो राधा रमण के मंदिर में जाओ, क्योंकि उस मंदिर में चरण को देखो, मदन मोहन जी की याद करो, छाती को देखो, गोविंद जी की याद करो, मुख कमल को देखो, गोपीनाथ जी की याद करो, और तीनों मूर्तियों का दर्शन एक ही मूर्ति में हो रहा है। तो ये राधा रमण जी जो है वो गोपाल भट्ट के द्वारा प्रकट विग्रह हैं। और इसमें से हम क्या सीखते हैं कि भगवान क्या नहीं कर सकते। भगवान कोई भी चमत्कार दिखा सकते हैं, हमको श्रद्धा होनी चाहिए। अगर हम प्रार्थना करते हैं तो राधा रमण जी कोई भी चमत्कार आपके हमारे जीवन में कर सकते हैं। उसके आगे कौन सा मंदिर है? यहां पर गोविंद देव का मंदिर है, थोड़ा सा ऊपर है। ये गोविंद देव का मंदिर ना ऐसे निर्माण हुआ, इसका बहुत अद्भुत कहानी है इसकी। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, ये दो गोस्वामी हैं, भाई भाई भी हैं, आचार्य भी हैं। सनातन जी बड़े हैं, रूप गोस्वामी छोटे हैं। तो ये जब वृंदावन में आए, तो उसके पहले एक मुसलमान राजा के यहां पर प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में काम करते थे। इनके पास में इतना धन था कि जो हमारे पास होता है ना, वो यॉट, जानते हैं आप यॉट कैसे होता है, उसमें कई मंजिल की बिल्डिंग बोट में होती है, बोट में बिग बिल्डिंग्स आर देयर ऑन द बोट एंड दे आर सेलिंग इन द ओशन। तो ऐसे बोट लोड्स भर के उनके पास स्वर्ण की मोहरा थी, दे हैड गोल्ड कॉइन्स ओवरफ्लोइंग विद दिस काइंड ऑफ बोट्स। इतना धन था उनके पास, इतना अधिकार था, ऐश्वर्य था, लेकिन भगवान की भक्ति की वजह से सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने और वृंदावन में जाकर सन्यासी बने और वृंदावन में जाकर भजन करते थे। तो एक दिन जब रूप गोस्वामी बैठकर भजन कर रहे थे, तो एक ब्रजवासी उनके पास आया और कहते, महाराज हमारी गाय जो है ना, वो एक अद्भुत काम करती है, जब जाती है तो दूध भरा रहता है, आती तो दूध खाली करके आ जाती है, हमें दूध नहीं मिलता उसका। और ये गोविंद जी का खोज में थे, गोविंद जी कहाँ है वृंदावन में, सब घर घर में जाके ढूंढ के आए थे, गोविंद जी मिले नहीं। उनको पता था कि वज्रनाभ ने गोविंद जी का विग्रह बनाया था और स्थापन भी किया था, समय के साथ लुप्त हो गया, कहाँ गया, किसी के घर में, ब्रजवासी के पास कहीं है, कहीं भी नहीं मिला। ये रो रहे थे कि गोविंद जी का दर्शन नहीं हो रहा है, प्रकट नहीं हो रहे। और एक ग्वाल बाल कह रहा है कि मेरी गाय जो है ना, वो दूध भर के अपने थन में लेके जाती है और खाली करके आती है। तो उन्होंने गाय का पीछा किया, तो गाय एक छोटे से टील पर जाकर ऊपर बैठकर अपना सारा दूध छोड़ देती थी वहां पर। तो स्वप्न में गोविंद जी आए रूप गोस्वामी के और कहा कि मैं उस छोटी सी टील के अंदर हूं, आई एम अंडर द हिलॉक। ब्रजवासियों की सहायता से बड़ी नाजुक तरीके से मुझे निकालना। तो अगले दिन वो स्वप्न के आदेश के अनुसार गए और उन्होंने भगवान को प्रकट किया। राधा गोविंद जी के विग्रह प्रकट हुए। तो राधा गोविंद जी प्रकट हुए तो उनके साथ में रहने लगे पेड़ के नीचे, योगपीठ की जगह पर, जहां पर ये टील था ना उसका नाम है योगपीठ। वो योगपीठ के पास रहने लगे। तो एक दिन मान सिंह आए, अकबर के दरबार के मंत्री, क्या कहते हैं, सेनापति। वो मान सिंह दे रूप गोस्वामी के शिष्य थे। तो मान सिंह ने कहा कि कुछ सेवा बताइए महाराज, मैं दर्शन करने के लिए आया हूं, मेरे पास बहुत धन है। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि मुझे धन की आवश्यकता नहीं, मैं तो सन्यासी हूं, लेकिन गोविंद जी पेड़ के नीचे रह रहे हैं, इनके लिए मंदिर बनाओ। तो राजा मान सिंह ने 7 मंजिल का मंदिर बनाया और हर एक मंदिर के पिलर पे लीलाएं काव की उसने, ही कार्व्ड ऑल लीलाज। एक में भगवान गोवर्धन उठा रहे हैं, एक में वस्त्र छीन रहे हैं, रासलीला कर रहे हैं, एक में अगासुर को मार रहे हैं, एक में क्या कर रहे हैं, ऐसे अनंत लीलाएं हर एक पिलर पर बनाया उसने। इतना अद्भुत मंदिर बनाया कि एक एक जगह पर भगवान की लीलाओं का प्रकट था और बीच में गोविंद जी को स्थापन किया। और उसके 7वें मंजिल के छत पर एक मशाल जलती थी हमेशा। वो आगरा में औरंगजेब को दिखाई पड़ी जब वो अपने छत पर खड़ा होकर देख रहा था। उसने अपने सेनापति से पूछा ये क्या है, तो कहते हिंदुओं का मंदिर है ये। तो उतना उसको ईर्ष्या हुई, ही फेल्ट सो एनवियस, चलो आक्रमण करते हैं, सब मंदिर को तोड़ देते हैं। तो उसने आक्रमण किया और ये मंदिर के 5 मंजिल तोड़ दिया उसने। आज जो मंदिर है वृंदावन में इतना विशाल है वो, लेकिन केवल 2 मंजिल है वो, 5 मंदिर तोड़ दिए गए हैं उसके। तो ये गोविंद जी का मंदिर है, ये रूप गोस्वामी का मंदिर है, रूप गोस्वामी के द्वारा पूजित विग्रह जो है वो इस मंदिर में विराजमान है। राधा गोविंद जी जो है ना, हमारे भक्ति में 3 स्तर होते हैं। एक स्तर होता है मदन मोहन जी, तो इसके आगे मदन मोहन जी का मंदिर हम भी दिखाएंगे ना सबको, चलो उसकी कहानी बता देते हैं आपको। ये गोविंद जी का मंदिर कहानी हो गई, अभी मदन मोहन जी की कहानी सुनते हैं। मदन मोहन जी की कहानी ऐसी है कि अद्वैत आचार्य महाविष्णु के अवतार चैतन्य महाप्रभु के समय में हुए, वो वृंदावन में भजन करने के लिए आए थे। एक वट के नीचे बैठकर भजन कर रहे थे तो उनके सामने ये मदन मोहन जी प्रकट हो गए और उस वट के नीचे ही मदन मोहन जी की उन्होंने सेवा की। जब चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ तो ये मूर्ति को एक वृंदावन के मथुरा के एक चौबे थे चतुर्वेदी पुरुषोत्तम चौबे, उसको सौंप दिया उन्होंने कि आप इनकी सेवा करो, मैं जा रहा हूं। पुरुषोत्तम चौबे के घर में इनकी सेवा होने लगी तो सनातन जी गोस्वामी वृंदावन में भिक्षुक बनकर आए, सन्यासी बनकर आए। तो इनके घर में भिक्षा करने गए, कहां पर गए, मथुरा में पुरुषोत्तम चौबे के घर में गए। तो क्या कह रहे हैं, देख रहे हैं चौबे की जो पत्नी है ना वो डंडा लेकर डांट रही है भगवान को, बड़ा उदम करते हो, समय पे आते नहीं हो, आपको समय पे आना चाहिए, भोजन करना चाहिए। क्योंकि ये मूर्ति से बाहर निकलकर व्यक्ति बनकर भी उनके बच्चों के साथ खेलते थे जमुना किनारे, कभी मूर्ति बनते थे कभी बालक बनते थे, कभी साक्षात है कभी मूर्ति है। तो उनका भाव भी ऐसा ही था, चौबे की पत्नी है, चौबे का माता पिता का भाव था। तो भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन भी कर रहे हैं और मूर्ति में भी सेवा कर रहे हैं। तो जब भोजन अर्पण कर रही ना भगवान को तो डांट रही है भगवान को, और महाराज जी भिक्षा करने के लिए दरवाजे पे खड़े हैं सनातन जी महाराज, वो कहते हैं मैया वो भगवान को डांटते नहीं, ऐसे ऐसे कैसे डांट रही है आप, ये आपका सही नहीं है, हमारे तरीके से ये गलत है आपका। तो मैया डर गई, बोले साधु महाराज बता रहे हैं मैंने कुछ गलती किया, तो डांट रोने लगी वो, अरे मैंने भगवान को डांटा, अच्छा नहीं किया, अपराध किया भगवान का। ये भिक्षा लेके घर चले गए वृंदावन में। रात को भगवान उनके स्वप्न में आए मदन मोहन जी, क्या बोले, तुमने सारा रस में भंग कर दिया, मैया मुझे बहुत प्रेम से सेवा करती थी मेरा, मैं बड़ा आनंद में था वहां पर डांट खाने में और बड़ा मजा आता था मुझे, तुमने आके उनको सब नियम सिखा दिया और अभी आप मुझे खाली आरती करती मेरी, वो डांटती नहीं मुझे, मेरा अभी आनंद खत्म कर दिया तुमने वहां का। अभी एक काम करो, कल दोबारा वहां पर जाओ भिक्षा मांगो और वो आपको मुझे भिक्षा में दे देंगे, उसको लेके आके तुम सेवा करो मेरे। अभी जैसा आपको लगता है ना आइडियल सेवा कैसे करनी होती है वैसे तुम करो। तो इनको बड़ा बुरा लगा कि अरे मैंने भगवान के रस में भंग कर दिया। उसी रात को भगवान उसके स्वप्न में गए, किसके? पुरुषोत्तम के पत्नी के, और कहा ये बाबा कल तुम्हारे पास दोबारा आएंगे भिक्षा मांगने के लिए, मुझे उनको भिक्षा में दे देना। तो रोने लगी वहां पर, अरे हाँ मैंने डांटा ना उनका, अपराध किया, इसलिए भगवान नाराज हो गए, भी जा रहे हैं मेरे हाथ से, क्या करे, भगवान की इच्छा तो जाना पड़ेगा, देना पड़ेगा मुझे। अगले दिन ये गए भिक्षा मांगने के लिए, तो पुरुषोत्तम चौबे की पत्नी ने आंखों में आंसू लेते हुए इनको ये भिक्षा में दे दिए, इन्होंने ले लिए और ये वृंदावन में आए। रास्ता में भगवान उनसे बोल रहे हैं, ये उनको भगवान से बोल रहे हैं कि देखो भाई मैं तो फकीर आदमी हूँ, भिक्षा मांगता हूँ, रूखी सूखी मिलती है वो खाता हूँ, मेरे पास तुम्हारे पास भोग लगाने के लिए कुछ नहीं तुम्हारे लिए। तो कह रहे हैं कोई बात नहीं, जो मिलेगा वो भोग लगा दो, मैं खा लूंगा उसको, देखो बाद में कुछ बोलना नहीं है, ये चाहिए वो चाहिए, तुम तो बड़े नटखट ठाकुर हो, तो मिठाई चाहते हो कोई मक्खन चाहते हो, मेरे पास कुछ है नहीं, जो आपको मिलेगा भिक्षा में दे देना मुझे आप। ऐसे कहकर वृंदावन में आए इनके साथ में और पेड़ के नीचे बैठकर अपनी सेवा करने लगे। और सनातन जी महाराज इतने विरक्त थे ना, उनको भिक्षा में आटा मिलता था, गेहूं का आटा, यमुना जी के जल में भिगाते थे और गोली बनाते थे उसकी, हाँ जैसे हम लोग बनाते रोटी बनाने के लिए, और वो गोली ना डायरेक्टली चूल्हे में भूनते थे उसको, ही यूज्ड टू बेक द बॉल्स, बिना नमक के ऐसे ही भूनते थे और भोग लगाकर खाते थे उसको। बहुत दिन बीत गए, एक दिन मदन मोहन जी ने बोला, अरे सनातन कितना दिन बिना नमक का गोली खिलाओगे, अभी कुछ नमक डाला करो। तो वो कहते आपने, आपको मैंने कहा था ना कि मेरे पास जो है वही है, अभी आज नमक मांग रहे हो कल मिठाई मांगोगे, कहां से लाऊंगा मैं, यह है वो खा लो अभी मेरे पास और कुछ नहीं है। उसी समय एक व्यापारी आया, बड़े अद्भुत कहानी है, बड़े ध्यान से सुनो। उसी समय जब भगवान ने नमक की मांग की, उस समय एक नमक का व्यापारी आया मुल्तान पंजाब से, उसका हवाई जहाज अपना क्या कहते बोट, उसकी जहाज जो था ना वो जमुना जी में आके तूफान में अटक गया। तो कैसे भी वो उसने जंप मारा जमुना जी में और कैसे तैरता हुआ आ गया किनारे में, उसका जहाज अंदर डोल रहा है पूरा तूफान में। तो नीचे बालक खेल रहे थे बहुत सारे, कृष्ण भी थे उसके अंदर, मदन मोहन जी भी खेल रहे थे प्रत्यक्ष रूप में। तो बालकों को पूछते हैं, कह रहे मेरा जहाज डूब रहा है कोई बचाओ बचाओ। तो मदन मोहन जी कहते हैं बालक रूप में, उनको पता नहीं भगवान है, बालक रूप में कहते हैं कि ऊपर ना एक बाबा बैठे हैं सनातन जी महाराज, उनकी कृपा से आपका जहाज बच सकता है। तो भाग के ऊपर गए पहाड़ पे और वहां पर महाराज बचाओ बचाओ मेरा जहाज डूब रहा है। तो कहते नीचे मदन मोहन जी खेल रहे हैं ना, वो आपको बचाएंगे। उतने में क्या किया मदन मोहन जी ने, अपना पेटा निकाला और ऐसे घुमाया हवा में और तूफान को ऐसे खींच ले गया अपनी तरफ और हवा की दिशा बदल दिया और पूरा जहाज को किनारे पे लेके आया और जहाज बच गया। तो इनको विश्वास हो गया कि सनातन जी की कृपा से ये मेरा जहाज बच गया है। तो जहाज लौट के आया वापस महाराज जी के पास गए, बोले इसमें नमक है, नमक आप ले लो चाहे जितना ले लो। उन्होंने कहा कि मैं तो गरीब आदमी हूं, मैं क्या करूं उसका। तो उसने जाके सब धन दौलत जो है ना वो उसका जो था बेच के जो पैसा उन्होंने कमाया वो लेके वापस आया। वो कहते हैं कि ये तो जहाज डूब ही गया था, आपकी वजह से बच गया है, मुझे आपकी सेवा में देना है। तो कहते हैं मैं तो सन्यासी हूं, मैं क्या करूंगा इसका, आप मदन मोहन जी के लिए मंदिर बनाओ, मैं तो फकीर हूं भिक्षा मांग के खाता हूं। तो ये व्यापारी ने मदन मोहन जी के लिए वहां मंदिर बनाया, टील पर ऑन वन हिलॉक, वो ये मदन मोहन जी का मंदिर है। और ये मंदिर टील पे क्यों है, जब भगवान ने कालिया को दमन करने के लिए जमुना में छलांग लगाई थी, सब जानते हैं आप कहानी उसकी, भगवान ने कालिया का दमन किया, सब उसका विष निकाल दिया, उस पर नृत्य किया, उसके पत्नियों ने आकर प्रार्थना किया, तो कालिया को मारना भगवान ने कैंसिल कर दिया, बाकी सबको मारा लेकिन कालिया को ऐसे ही छोड़ दिया। तो कालिया को मारने के लिए जब जमुना जी के अंदर गए थे, मारा तो नहीं बाद में होंगे, लेकिन जब अंदर युद्ध कर रहे थे उसके साथ में, तो बहुत ठंडा जल था और बहुत देर तक भगवान ठंडे जल में रहे। जब ये कहानी समाप्त हुई ना तो भगवान को बहुत ठंड लगने लगी, तो इस स्टील के ऊपर भगवान आके बैठ गए और जब ये स्टील पर आकर बैठे तो 12 सूर्य वहां पर आए, 12 सन्स, उन्होंने साथ में आकर भगवान को हीट दिया। हमारे मेडिकल में कहते हैं ना हीट फोमेंटेशन, व्हेन यू आर टू कोल्ड यू आर गिवन हीट, तो वैसे 12 सूर्य, एक नहीं 12 सूर्य ने चारों तरफ से उनको गर्मी दिया, तो भगवान थोड़े उष्ण हो गए। फिर भगवान को पसीना आया और वो पसीना बहा, उधर सरोवर बना, उसका नाम है प्रस्कंदन सरोवर। संस्कृत में स्वेटिंग प्रोसेस को प्रस्कंदन कहा गया है, तो प्रस्कंदन का मतलब है दिव्य स्वेद। हमारे जो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, स्वेटलैंड्स अंडर द स्किन, उसका नाम है स्वेद ग्रंथि कहते हैं उसको संस्कृत में, और स्वेदन कहते हैं पसीना आने की क्रिया को। हमारे पसीने को बदबू आती है, भगवान के पसीने को खुशबू आती है। ऐसा दिव्य सुगंधी जल भगवान के शरीर से निर्माण हुआ और उसका सरोवर बना, उसका नाम बना प्रस्कंदन सरोवर। और ये जो टील है ना, उसका नाम पड़ा द्वादश आदित्य टील। मतलब क्या, 12 यानी द्वादश, आदित्य यानी सूर्य, जहां पर 12 सूर्यों ने बैठकर भगवान को उष्णता दिया, उस टील का नाम पड़ा द्वादश आदित्य टील। इस टील पर सनातन जी मदन मोहन जी की सेवा कर रहे थे, इसी टील पर यह मंदिर बनाया गया है। इसी टील पर पहाड़ पर भगवान ने मदन मोहन जी के लिए अपनी मुरली से एक मीठे जल का कुआं बनाया गया था, उसको कहते हैं वेणुकूप। पहाड़ में कभी कुआं होता है क्या? लेकिन दुनिया में जितने पहाड़ में कुआं हैं सब भगवान ने बनाए हुए हैं। हम जो कुआं बनाते हैं वो जमीन पर बनाते हैं मिट्टी के अंदर से, लेकिन भगवान ने ऐसे कई पहाड़ों में वृंदावन में अपनी मुरली से कुआं बनाए हैं। आज भी 5000 साल के बाद भी उस पत्थर के अंदर बनाए हुए कुएं में ठंडा और मीठा पानी का स्वाद प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। तो मदन मोहन जी हो गए, गोपीनाथ जी बचे हैं। अभी तीसरे विग्रह जो वज्रनाभ ने बनाए थे गोपीनाथ जी, इनको भी स्थापन किया गया था, ये भी लुप्त हो गए। तो एक मधु पंडित नाम के बड़े महाशय थे आचार्य। सब लोग एक बात हाथ उठा उठाकर बोल लीजिए, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। तो गोपीनाथ जी को ढूंढते ढूंढते मधु पंडित आ गए और गोपीनाथ गोपीनाथ कहकर वृंदावन में घूमते थे, कहीं गोपीनाथ जी नहीं मिले। बड़े भाव विभोर होकर आंखों से आंसू बहाते हुए पुकारते थे वो। एक बार गोपीनाथ को पुकारते 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 सीधे जमुना जी में चले गए और जमुना जी में गिर गए और डूब रहे थे। उनको होश तो था नहीं, भगवान के भाव में मग्न थे वो। जब पुकारते पुकारते गिर गए तो गोपीनाथ जी प्रकट हो गए प्रत्यक्ष रूप में और उनको डूबते हुए उन्होंने बचाया और गोद में लेकर बाहर जमुना जी के आए। तभी भी भाव में ही थे ये। जब होश में आए तो दर्शन प्राप्त हुआ गोपीनाथ जी का। तभी बोल रहे गोपीनाथ जी को कि आप अब मेरे साथ में रहिए। तो उन्होंने कहा कि आपकी इच्छा है तो रहता हूं आपके साथ में, कैसे रहूं? कहते विग्रह के रूप में रहूं। तो प्रत्यक्ष गोपीनाथ जो है वो विग्रह के रूप में आए और उनकी सेवा मधु पंडित ने की। तो मधु पंडित ने फिर मंदिर बनाया, वो गोपीनाथ जी का मंदिर है। तो ये मदन मोहन जी, गोविंद जी और गोपीनाथ जी, ये वृंदावन के तीन प्रमुख विग्रह हैं। मदन मोहन जी के चरण कमल जो है ना, वो हमें भगवान से संबंध देते हैं। ही गिव्स कनेक्शन ऑफ हिमसेल्फ टू अस बट एक्सपेक्ट्स टू वी हैव डिसकनेक्शन विद द वर्ल्ड। तो मदन मोहन से प्रार्थना करते हैं कि हमें दुनिया में जो दिल लगा हुआ है ना, उसको छीन कर आप अपने चरणों में लगा दो। जैसे मोबाइल ले लिया ना आपने, तो सिम कार्ड लगता है ना, सिम कार्ड कनेक्टिविटी के लिए। तो ये भगवान के चरण कमल जो है मदन मोहन जी के, ये कनेक्टिविटी हमारी और भगवान के बीच में, डिसकनेक्टिविटी फ्रॉम द वर्ल्ड एंड कनेक्टिविटी विद द लॉर्ड। फिर जो भक्त भगवान से संपर्क प्राप्त करता है वो भगवान की सेवा को प्राप्त करता है, भगवान की सेवा करता है। तो ये भगवान की सेवा जो है ये हमको गोविंद जी देते हैं। गोविंद जी का विग्रह जो है वो हमें भगवान को सेवा देते हैं भगवान की। और भगवान की सेवा करने के बाद जो सेवा में परफेक्शन है, परिपूर्णता है, वो जो सेवा की परिपूर्णता है वो गोपीनाथ जी देते हैं। और जब हम लोग पवित्र हो जाते हैं भगवान की सेवा करके, शुद्ध हो जाते हैं, काम क्रोध लोभ से मुक्त हो जाते हैं, और पवित्र हृदय से भगवान की भक्ति और प्रेम का अनुभव करते हैं, तब गोपीनाथ जी जो मुरली बजा रहे हैं वो हमको सुनाई पड़ती है। श्रीमान रास रसारंभी बंसी वट तटस्थित कर्षण वेणु स्वनेर गोपीर गोपीनाथ श्रीय सुनः। ये जो गोपीनाथ जी की मुरली है ना, ये सदैव बज रही है लेकिन हमको सुनाई नहीं पड़ती है। क्यों नहीं सुनाई पड़ती है? अंदर इतना शोर चल रहा है ना, अपने काम क्रोध लोभ वासनाओं का शोर चल रहा है, उसमें मुरली कहाँ सुनाई पड़ेगी? जब ये शोर शांत हो जाएगा ना, तभी वो जो मुरली बज रही है वो सुनाई पड़ेगी। और कैसी बजेगी वो? जब चरणों के साथ संपर्क होगा, सेवा प्राप्त होगी और सेवा में परिपूर्णता प्राप्त होगी, तब परिपूर्ण सेवा करने वालों को वो मुरली की तान सुनाई पड़ती है, तब जाके जीवन परिपूर्ण होता है। तो हम वृंदावन जाते हैं किस लिए? नॉट फॉर साइट सीइंग, वृंदावन जाते हैं फॉर कनेक्टिविटी, आफ्टर कनेक्टिविटी फॉर सर्विस, आफ्टर सर्विस टू अचीव परफेक्शन इन सर्विस। और इसलिए हम इन मंदिरों में जाके प्रार्थना करते हैं कि हमें आप संपर्क दीजिए आपका, हमें सेवा में लगाइए, हमें सेवा में परिपूर्णता दीजिए, और एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी मुरली की तान सुनाई पड़ेगी, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। सबको मुरली बजाकर बुला रहे हैं भगवान, सबको बुला रहे हैं लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। अपने ही आवाज में, अपने ही ध्वनि में, अपने ही शोर में सब लोग मशगूल हैं। भगवान पुकार रहे हैं, हम नहीं सुन रहे हैं। तो संत लोग फिर हमको एक बीच में आ जाते हैं, कृपा कर देते हैं, रहस्य का भेद करते हैं और बताते हैं कि हम सब लोग भगवान की सेवा करना चाहिए। बहुत जन्मों तक हमने इस दुनिया में रहते हुए धन दौलत, हाँ, शरीर का सुख, ऐश्वर्य, कीर्ति, इसमें हम लगे रहे, बार बार आते रहे, धक्का खाते रहे, दुख भोगते रहे। अभी इस जीवन में हमको ये सब कुछ छोड़कर भगवान के चरणों में लीन होना है। और फिर भगवान हमें, हम जब योग्य हो जाएंगे, कृपा प्राप्त हो जाएगी, राधा रानी कृपा करेगी, भक्ति देगी, हमें गोद में स्वीकार करेगी, हमें तैयार करेगी, हम परिपूर्ण हो जाएंगे तो भगवान हमें स्वीकार कर लेंगे। ये वृंदावन धाम के यात्रा का फल है। वृंदावन धाम की यात्रा करनी है तो भगवान के चरणों का सहारा लेने के लिए करनी है। वी हैव कम हियर टू टेक शेल्टर ऑफ द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड। वी हैव नॉट कम फॉर एंजॉयमेंट, नॉट कम फॉर साइट सीइंग, नॉट कम फॉर ईटिंग नाइस फूड, दैट इज आर पार्ट ऑफ द गेम, बट द पर्पज इज टू अटेन एंड टेक द शेल्टर ऑफ द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड। ऑफर अवर सेल्फ एट द फीट ऑफ द लॉर्ड। नमन करने का मतलब क्या है? मन ही उनके चरणों में रख दिया, उसको कहते हैं नमन। भगवान को नमन करने का मतलब क्या है? झुककर अपना मन उनके चरणों में रख देना है, बस। इसके आगे मन केवल आपका विचार करेगा, बाकी कर्तव्य दुनिया के होते रहेंगे। वी विल कीप डूइंग आवर ड्यूटीज बट आवर हार्ट विल बी विद द लॉर्ड। तो आइए हम आगे जाकर वृंदावन धाम के दर्शन करें। और हर जगह पर मैं आपको प्रार्थना की याद दिलाऊंगा कि क्या प्रार्थना करना है यहाँ पर, वो हृदय से प्रार्थना कीजिए और भगवान यहाँ पर आपकी प्रार्थना सुनने के लिए बैठे हैं। अनंत जीवों में से कुछ चुने जीव यहाँ पर आए हैं उनका आश्रय लेने के लिए, तो उनको हृदय से वो आश्रय देते हैं, अपना बना लेते हैं। अभी कल रामनवमी है ना, एक बात बताना आपको जरूरी है बहुत। सब लोग ध्यान से सुनिए। हाँ, जब विभीषण भगवान के पास आए थे ना, तो विभीषण लंका से आए थे, लात मार के उसको भगा दिया था, तो चार अपने साथियों के साथ में आए थे वो प्रभु राम का आश्रय ग्रहण करने के लिए। लेकिन अभी भी हवा में ही थे, ऊपर ही खड़े थे आकाश मार्ग में, और मैसेज भेज दिया था कि बात करना, अगर मंजूर है तो हम आएंगे चरणों में। तो यहां पर मीटिंग हो रही है, वो वहीं पर खड़े हैं वेटिंग, और सुग्रीव और अंगद और जाम्बुवंत, हनुमान, नल, नील, ऐसे सब वानर बैठे हुए थे मेन, और राम लक्ष्मण बैठे हुए हैं और डिस्कस कर रहे हैं क्या करना है। तो प्रभु राम कहते हैं आपका सबका मत क्या है? तो सुग्रीव, जाम्बुवान, सब लोग कहते हैं नहीं नहीं, ये शत्रु का दूत है, इसको मार देना चाहिए, शरण तो भूल ही जाओ, ये तो षड्यंत्र है, ये तो उनकी चाल है, अपने अंदर घुस के सब खबर करके उनको बताते रहेगा मायावी सिद्धि विद्या के द्वारा और हम परास्त हो जाएंगे, इनको कतई तौर पर इन पर आश्रय देना नहीं चाहिए। सब लोग ने एक मत से व्यक्त किया। लास्ट नंबर किसका आया? हनुमान जी का। भगवान ने कहा हनुमान जी आपका मत क्या है? तो हनुमान जी ने कहा कि जब मैं सीता की खोज में लंका गया था, उस समय मैंने लंका में एक जगह से राम राम का आवाज सुना, मुझे बड़ा कुतूहल हो गया कि लंका के अंदर राम नाम कौन ले सकता है, इतनी हिम्मत किसकी है? तो जब मैं गया तो आवाज कुटी से आ रही थी, तो मैं कुटी में गया तो उस कुटी में सभी दीवारों पर राम का नाम लिखा था, छत पे भी राम का नाम लिखा था। झोपड़ी के शुरुआत में शंख चक्र पद्म गदा का चिन्ह था, झोपड़ी के आंगन में तुलसी का पौधा भी था और अंदर बैठकर विभीषण महाराज राम नाम जप रहे थे। मुझे बड़ा आश्चर्य हो गया, मैं झोपड़ी में गया, उनको वंदन किया कि महाराज आप कौन हो? तो मैं रावण का भाई हूं और रावण का भाई होकर राम नाम जप रहे हो, तो मैं तो उनका भक्त हूं। तो रावण को पता चलेगा तो विभीषण कहते हैं कि रावण यहां पर आए थे एक बार, मुझे डांट रहे थे बहुत कि मेरा भाई होकर तुम मेरे शत्रु का नाम दीवार पे कैसे लिख सकते हो। तो मैंने उनको जवाब दिया, भैया ये तो मैंने आपका ही नाम लिखा है, वो कैसे? रा मतलब रावण और मां मतलब मंदोदरी आपकी पत्नी, समझ में आया आपको? रा और मां, रावण मंदोदरी। तो रावण थोड़ा सा खुश हो गया उससे, ये देखो शॉर्टकट में मेरा नाम लिख के रखा है, ऐसा अद्भुत भक्त है ये विभीषण। मैंने उसका उसकी समर्पण देखा है, उसकी हिम्मत देखी है, उसका करेज देखा है मैंने कि रावण के दरबार में रावण के राज्य में रहकर भी उसकी इतनी हिम्मत है कि वो आपका नाम लेता है, ये आपका परम भक्त है, ये संकट समय पर प्रतिकूल स्थिति में भी आपका नाम ले रहा है। ऐसा नहीं कि वो भक्तों के बीच में रहता है तो आराम से नाम ले रहा है, राक्षसों के बीच में रहते हुए भी आपका नाम ले रहा है। तो मेरा विचार है कि इसको शरण दी जाए क्योंकि ये प्रामाणिक जीव है, इसलिए हमारा मत अगर प्रामाणिक होगा ना तो सबके वो विरुद्ध होगा, तो बताने के लिए डरना नहीं चाहिए। इफ यू आर श्योर ऑफ योर ओपिनियन यू शुड गिव योर ओपिनियन इवन इफ एवरीबडी हैज गिवन ओपिनियन अदरवाइज। तो फिर प्रभु कहते हैं उसके बाद में, लास्ट जजमेंट इज प्रभु, प्रभु कहते हैं कि मैं जानता था विभीषण का हृदय कैसा है और मैं अभी डिक्लेयर करता हूं, घोषणा करता हूं कि अगर विभीषण आता है तो मैं तो उसको स्वीकार करूंगा ही, लेकिन रावण भी आ गया ना कल पश्चाताप करते हुए तो उसको भी मैं शरण दूंगा। और वो एक अद्भुत श्लोक कहते हैं उस समय सभा में, वो हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वो श्लोक यह है कि तवा अस्मिति, अगर कोई व्यक्ति मेरे सामने एक बार आकर कहता है तवा अस्मिति, मतलब मैं आपका हूं, आई एम योर्स, तो मैं भी उसका हो जाता हूं, मैं उसको अपना लेता हूं, चाहे वह राक्षस हो, पापी हो, कपटी हो, धूर्त हो, कुछ भी हो। एक बार अगर कोई जीव मुझे गलती से भी मैं आपका हूं ऐसे कहता हूं तब मैं उसका हो जाता हूं, और ऐसा कहने पर वो भूल भी जाएगा मैंने क्या कहा था, लेकिन मैं नहीं भूलता उसने क्या कहा था, और मैं उसको ठुकराता नहीं हूं एक बार अपनाने के बाद में। उसके बाद में उन्होंने विभीषण को बुलाया और स्वीकार कर दिया। तो हमें क्या जरूरी है कल रामायण, कल रामनवमी के दिन पे इन सब जगह जाकर आप दर्शन करते हो, बोलना भगवान मैं आपका हूं, मैं आपकी हूं, आई एम योर्स, बताने को भूलना नहीं, क्योंकि ऐसा कहने से भगवान ही बिकम्स ओब्लाइज्ड, वो आपको स्वीकार करने में अपना बनाने में मजबूर हो जाते हैं, ऐसा भगवान ने खुद ही वादा किया है। फिर विभीषण जी आते हैं और शरण लेते हैं तो भगवान तुरंत कहते हैं मैं आपको लंका का राजा बनाऊंगा। अभी देखो अभी युद्ध विद्ध कुछ हुआ नहीं है, अब युद्ध होना बाकी है, युद्ध जीतना बाकी है, सीता को लाना बाकी है, लंका अपनी होनी है, तब उनको देना है ना, उसके बाद में पहले ही बोल देते वादा का, मैं आपको लंका का राजा बना दूंगा। तो जो सुने, जिन्होंने सुना था ना सभी डायलॉग कि तवा स्मिति, बोलेंगे तो हम स्वीकार करेंगे, तो रावण आएगा तो फिर उसको क्या देंगे आप? अगर रावण आएगा तो उसको आप मारेंगे ना युद्ध में, तो शरणागत हो गया तो उसको भी शरण देंगे आप, तो इसको आपने ऑलरेडी लंका दे दिया, फिर रावण को क्या देंगे? तो भगवान कहते हैं अगर रावण आता है तो मैं रावण को अयोध्या दे दूंगा, क्योंकि तो वो मेरी होगी ना, मैं जब जाऊंगा लौट के तो राज्याभिषेक होगा, मेरे हक में होगी, तो मैं लंका विभीषण को दूंगा और रावण को अयोध्या दूंगा। तो कहते हैं कि आप कहां रहेंगे फिर? एक राज्य तो आपने रावण को दिया, एक राज्य को विभीषण को दिया, फिर आप कहां रहेंगे? मैं मेरे भक्तों के हृदय में रहूंगा, ऐसे भगवान ने कहा है। ये प्रसंग हमारे लिए बहुत जरूरी है समझना, ये सब हमारे लिए है क्योंकि भगवान हमारे अंदर रहने को तैयार है। आखिर में हुआ तो नहीं ऐसा, रावण तो आए नहीं शरण में, उनको मार दिया गया, भगवान अयोध्या के राजा बने, लेकिन भगवान का भाव तो वैसा ही है ना, भगवान ने कहा था अगर वो आते तो मैं शरण देता उनको और लंका की जगह पर उनको अयोध्या दे देता। ऐसे हमारे प्रभु हैं, केवल वो इंतजार कर रहे हैं हमारा कि कब हमारे भूले भटके जीव लौट के आएंगे और कब मैं उन्हें अपना बनाऊंगा और कब मैं उन्हें अपने धाम में ले जाऊंगा, कब उनको दुखों से मुक्त करके मेरे चरणों में रखकर आनंद का और सुख का अनुभव दूंगा। तो रामनवमी का उत्सव इसलिए है, रामनवमी का उत्सव बार बार हर साल एक बार कम से कम भगवान को कहने के लिए है कि भगवान हम आपके हैं, प्लीज मेक मी योर्स। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।